अभी कौन सा उत्सव आने वाला है? हरे कृष्णा। अभी कौन सा उत्सव गया दो दिन पहले? गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा ये हिंदू संवत्सर का पहला दिन है, हिंदू वर्ष शालिवाहन शके इसका ये प्रथम दिन है। इस दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया था, बहुत पवित्र दिन माना गया इसमें। तो इसके चैत्र महीने के पहले दिन को कहते हैं गुड़ी पाड़वा, चैत्र शुद्ध प्रथमा प्रतिपदा, और इसके नवे दिन को कहते हैं रामनवमी, चैत्र शुद्ध नवमी। इस दिन प्रभु रामचंद्र का जन्म हुआ। आप सब जानते होंगे कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो एक एक ब्रह्मांड के रूप में निर्माण किया, और एक एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा होते हैं और एक विष्णु होते हैं और एक शिवजी होते हैं। तो वो ब्रह्मांड में हम सब लोग जन्म लेते हैं, कोई मनुष्य बन के लेता है, कोई प्राणी बन के, कोई पंछी बन के, कोई जानवर बन के, कोई मछली बन के। ऐसे 84 लक्ष योनि में सब जीव जन्म लेते हैं उस ब्रह्मांड के अंदर, और उस ब्रह्मांड के अंदर जैसे हम लोग जन्म लेते हैं तो जन्म मृत्यु बीमारी बुढ़ापा ये चक्र में फंस जाते हैं। जो कोई जन्म लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है, और जन्म और मृत्यु के बीच में वो व्यक्ति बूढ़ा होता है, बीमार होता है, कष्ट भोगता है, फिर एक दिन मृत्यु प्राप्त करता है। इस तरह से इस दुनिया में कौन जन्म लेते हैं? जो सब लोग भगवान को भूल चुके हैं हमारे आप जैसे, वो सब जन्म यहाँ पर लेते हैं। और भगवान को भूलकर इस दुनिया का भोग लेना चाहते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। भगवान को भूलकर सब लोग हम लोग यहाँ पर आते हैं, और भगवान को भूलकर आते हैं भोग लेने का प्रयास करते हैं, भगवान को छोड़कर खुशियां लुटाने का प्रयास न करते हैं। असली खुशी किसमें है? जिसमें भगवान की खुशी है उसमें हमारी खुशी है, लेकिन हम लोग भगवान को छोड़कर उस खुशियों को भोगना चाहते हैं। इसीलिए हम सबका इस ब्रह्मांड के अंदर जन्म होता है। फिर कोई मछली बनकर आता है, कोई पेड़ बनकर आता है, कोई पंछी बनकर आता है, कोई जानवर बनकर आता है, कोई देवता बनकर आता है, और कोई इंसान बनकर आता है। तो ये जितने भी जीव का मैंने नाम लिया वो सभी लोग, देवता लोग भी जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा इस चक्र से गुजरते हैं, कोई भी इसमें से मुक्त नहीं होता है। देवता लोग भी जन्म लेते हैं, बहुत लंबा समय जीते हैं, लेकिन वो भी मर जाते हैं, फिर उनको भी दोबारा जन्म लेना पड़ता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा का भी जन्म होता है, ब्रह्मा की भी मृत्यु होती है। ये मत समझना कि ब्रह्मा और बाकी देवता लोग अमर है, ऐसा मत समझना। खाली उनका जीवन हमारे से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसलिए हमको लगता है कि वो तो अमर ही है, ऐसा लगता है। कैसे? जब हम रात को सोते हैं ना तो कई कीटक जन्म लेते हैं रात को, और हम लोग जब सुबह उठते हैं तो उस कीटक की कई पीढ़ियाँ हो जाती हैं, क्योंकि उन कीटक का जन्म ही 2 घंटे का है, पूरा जीवन 2 घंटे का है। तो 8 घंटे की रात में 4 पीढ़ी हो गई ना उसकी। ऐसे भी कीटक हैं जो जन्म लेना, बड़ा होना, बच्चे पैदा करना, बूढ़ा होना और मर जाना, ये सब कुछ जो है 2 घंटे में होता है। ऐसा छोटा जीवन भी है। तो अगर उस कीटक को आप बोलेंगे ये जो मनुष्य है ना, ये अभी सोया सो रहा है, ये जब उठेगा ना तो तुम्हारी 4 पीढ़ियाँ खत्म हो जाएगी, तो उसको यकीन नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो 2 घंटे में मर जाते हैं और ये खाली सो रहा है, और ये हमारी उसकी एक नींद में हमारी 4 पीढ़ियाँ आगे बढ़ रही है। जब ये उठेगा और वापस सोने को जाएगा तो उसके उठने से सोने तक और 20 पीढ़ियाँ निकल जाएगी हमारी। वैसे ही हमारा और ब्रह्मा जी का है, हमारा पूरा जीवन जो है उसमें जो 100 साल का होगा, तो ब्रह्मा जी का एक जीवन जो है वो कई करोड़ों साल का होता है। तो हम लोग कई बार जन्म लेंगे, कई बार मर जाएंगे, फिर भी वो ब्रह्मा जी वहीं रहेंगे। उसका एक जीवन जो है इतना करोड़ों सालों का है, उसका गणित भी मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत मुश्किल गणित है उनका, लेकिन बहुत लंबा है। एक ब्रह्मांड जितना समय रहता है उतना ब्रह्मा का जीवन रहता है, कई जीवन, कई पीढ़ियां और कई कीटक और कई मछलियां, कई पेड़, कई जानवर हजारों और करोड़ों बार जन्म लेके मर जाते हैं, फिर ब्रह्मा वही रहते हैं। और ब्रह्मा जी की जो पूरी जीवन है, जितना समय है, वो केवल विष्णु का एक सांस है। जब विष्णु सांस लेता है तो उतनी लंबी सांस लेता है, जो सांस जब छोड़ता है तो प्रलय होता है और विष्णु ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाता है। ये बहुत बड़ा अद्भुत गणित है, लेकिन समझने वाली बात यह है, आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना। समझने वाली बात क्या है कि चाहे आप ब्रह्मा हो जो करोड़ों साल खरबों साल जीते हो, चाहे आप वो कीटक हो जो दो घंटा जीते हो, सबको मरना है, याद रखना। इसलिए लंबी आयु होने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जिसको मरना है उसकी लंबी आयु का मतलब क्या है, एक दिन तो वो खत्म होने वाली है। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह बताया है, आ ब्रह्मा भुवनार लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुना, बार बार जन्म मृत्यु की आवृत्ति में ये सब जीव फंसे हुए हैं, ब्रह्मा से लेकर कीटक तक। तो इनका उद्धार कैसे किया जाए? जो भी आता है, दो घंटा जीता है या दो दिन जीता है या 22 साल, कल में वाड़ा गया था, पूछा गाय का जीवन कितना होता है, तो बोलते बहुत बुढ़ी हो चुकी थी गाय, तो अभी गुजर गई, कितना उम्र हो गया उसका, तो बहुत बुढ़ी हो गई थी, मतलब कितना, फिर भी कितना हो गया, बोलते 22 साल, 22 साल मतलब बहुत बुढ़ी हो गई वो। लेकिन मनुष्य को क्या बोलते हैं 22 साल में, बोलते जवान हो गई, बोलेगी है ना। फिर कुत्ता का जीवन कितना है, मैंने पूछा कुत्ता का लाइफ कितना होता है, बोले 8 साल होता है, मतलब 2 साल में कुत्ता बोलते जवान हो गया, एकदम एकदम रेडी, बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हो गया। 6 साल हो गए तो बुढ़ा हो जाता है, एकदम ऐसा डरता है, बाजू में जाके बैठ जाता है, और 8 साल हो गए तो मर जाता है। हमारा बच्चा 8 साल में तीसरी में पढ़ता है स्कूल में, छोटा सा बच्चा, लेकिन 8 साल वाला कुत्ता हो, 22 साल वाली गाय हो, 2 घंटे वाला कीटक हो, 80 साल वाले आप हो और करोड़ों साल वाले ब्रह्मा हो, सबको जन्म लेने के बाद एक दिन मरना है। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर, जिसका जन्म होता है उसको मरना है। तो भगवान को ऐसे ही जीवन के लिए देखकर दया आती है, क्यों? क्योंकि इतने सारे जीव यहां पर आते हैं भगवान को भूलकर, माया उनको पकड़ लेती है, माया के झपटने के बाद उनको कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। देखो गर्मी बढ़ रही है अभी बहुत, किस जगह बर्फ पड़ रही है, इसी समय पर इसी महीने में किस देश में बर्फ पड़ रही है, सब लोग पूरा ठंडी से कांप रहे हैं, और यहां पर इतनी गर्मी हो रही है कि दिमाग में दर्द होने लगता है। तो कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं अभी मच्छर काट रहे हैं, किधर किधर वर्षा नहीं होनी चाहिए वहां वर्षा हो रही है, सब फसल नष्ट हो रही है। तो जीव जो है वो माया के झपटने के बाद बहुत कष्ट भोगता है। वो माया झपटती क्यों है? कृष्णा भूलिया जीव भोगवांचक और, कृष्ण भगवान को भूलकर वो जीव भोग लेना चाहता है, तब उसको माया झपट कर पकड़ लेती है। तुम्हारे घर में जब तुम खाना बना रहे समझो, अचानक एक ड्रॉर में से कॉकरोच निकलता है, तो क्या करते आप? उसको झपट के जाके पकड़ लेते आप, क्यों? अरे खाना खाने की जगह पर फ्रिज के अंदर, सब्जी के अंदर छुपा हुआ है, हाँ मेरे सब्जी को खाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे ही वो निकलता है तो कैसे पकड़ते हैं हम लोग? झाड़ू से, हाथ से, कपड़े से, जो मिलेगा उसको पकड़ते हैं, या तो मार देते हैं, तो घर से खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह से जब हम कृष्ण को भूलकर माया को भोगने के लिए, दुनिया को भोगने के लिए बाहर निकलते हैं, तुरंत माया हमको झपट के पकड़ लेती है और पकड़कर कैद कर देती है इस शरीर के अंदर जिसमें आप रह रहे हो, इतने मजे से पकड़ के बंद कर देती है। और फिर शरीर के अंदर रहकर आप जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु, इसका दुख आपको भोगना पड़ता है, और उसके ऊपर से आपको ये गर्मी, सर्दी और परेशानी, मच्छर काट रहे हैं, इस सारी परेशानी भोगनी पड़ती है। लेकिन भगवान को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगता है। जैसे आपके घर में कोई बालक है, झगड़ा करता है पिताजी के साथ और घर छोड़ के निकल जाता है, मैं नहीं रहूंगा यहां पर, जब तक आप रहेंगे आपके घर पे मैं नहीं रहूंगा, ऐसा बोल के निकल जाता है, पिताजी बोलते जा 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 मत रहे मेरे पास, तू गुस्से में बोल देता है। लेकिन जब दूसरा दिन आता है और थर्ड डे आता है तो पिताजी को बुरा लगता कि नहीं, अरे मेरा बच्चा यहाँ रहना चाहिए, उसको अच्छी तरह रोटी खा के आराम से रह सकता है, कॉलेज जा सकता है, पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, मोबाइल ले सकता है मेरी तरफ से, बर्थडे मना सकता है अपना मेरी तरफ से, लेकिन मुझको छोड़कर अभी किधर रहता है, रेंटल में हॉस्टल में रहता है, खाने पीने का भी तकलीफ उसको हो रहा है अभी, तो पिताजी को दुख होता है कि नहीं होता है। तो पिताजी क्या करते हैं, अंकल को भेजते हैं, जा रे भाई, भाई भाई को बोलते हैं अपने, जा जरा उसको देख के क्या कर रहे हो। फिर वो जाके देख के आता है, बोलता है अरे तू इधर क्यों रहता है, तेरे को पापा ने बुलाया है, पापा ने मेरे को भेजा है तेरे को बुलाने के लिए, चल अभी घर पे, बहुत हो गया नाटक तेरा, और मस्ती नहीं करना अभी, घर पे जाओ, पापा के पास रहो, अच्छी तरह खाओ पियो और ऐश करो, कहे को यहाँ पर आके धक्का खाते हो, ना खाने का ठिकाना है, कपड़ा भी कैसा पहना है, चार दिन धोया भी नहीं है, शायद दो दिन तान भी नहीं लगता है किया आपने, भोजन मिलता है क्या ठीक से, नहीं नहीं साहब आपको खाना नहीं खाया था, अभी सुबह ढूंढ रहा हूँ नौकरी, ढूंढ रहा हूँ कहाँ पर फिर खाना खाऊंगा। अरे इतना परेशान क्यों होते हो तुम, पापा के घर जाओ, एक बार हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो, सॉरी पापा, बुरा मत मानना, पापा गले लगाएंगे आपको, गुस्सा नहीं करेंगे, लात नहीं मारेंगे आपको, हाँ तमाचा नहीं मारेंगे, मैं वादा करता हूँ आपको, चलो मेरे साथ। मान गया सुधर गया, नहीं मान गया तो नहीं नहीं मैं नहीं आऊँगा, मैं भूखा मरूंगा, नंगा घूमूंगा, लेकिन तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बैड लक। बैड लक मतलब क्या, उसको धक्का ही खाना रास्ते पे, इसलिए वो मान नहीं रहा है, अगर तकदीर अच्छी है उसकी तो तुरंत मान जाएगा, एक पापा को आके प्रणाम करेगा, बोला सॉरी पापा, पापा बोले कोई बात नहीं चिंता मत करो, आओ ये पार्टी बनाओ, पार्टी मेरा बच्चा वापस आया है आज, पार्टी सब लोगों को फ्रेंड को बुलाएगा और 50 आइटम खाना बनाएगा और डांस करेगा, बोला मेरा बेटा वापस आ गया आज। हमारे पापा दुनिया में ऐसे होते ना हमारे, तो भगवान तो सबके पापा हैं, वो हम लोग छोड़ के उनको यहाँ पर आके दुख भोग रहे हैं, तो वो लोग वहाँ पर पापा जो हमारे हैं भगवान शांति से बैठ नहीं सकते, वो क्या करते हैं अवतार लेते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अंकल को भेजा, क्यों भेजा, जो खोया हुआ बच्चा है उसको मनाने के लिए कि भैया तो आ जा वापस, तेरा घर है ये, तो छोड़ के गया है लेकिन ये घर तेरा ही है, मैं मरूंगा तो किसको दूंगा, तुमको ही दूंगा ना, तो तेरा ही घर है ये, अभी मैं हूं इसलिए मेरा राज्य है, जब मैं जाऊंगा तो तेरा राज्य चलेगा, नाम तेरा आएगा वसीयत पर। उसी तरह से भगवान भी बोलते हैं अरे तुम मुझे छोड़कर यहां पर दुनिया में भोग लेने के लिए आया है, लेकिन दर दर के ठोकरे खा रहा है, बीमार हो रहा है, बुढ़ा हो रहा है, क्या कैंसर हो रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, वेश्या के पास जा रहा है, कुछ अच्छा काम नहीं करना, नहीं छोड़ के बुरा काम कर रहा है, फिर गर्मी सर्दी का कष्ट भोग रहा है, फिर तेरे को मच्छर काट रहा है और चिकनगुनिया मलेरिया हो रहा है, इतना कष्ट क्यों भोग रहा है, चल मेरे पास लौट के आ जा। इसलिए वही विष्णु भगवान जिनकी एक सांस का समय ब्रह्मा जी का पूरा जीवन का समय होता है, वो विष्णु भगवान 10 अवतार लेते हैं। हम लोग आते ना, सातवा अवतार परशुराम प्रकटला, कहते ना मराठी में, वैसे संस्कृत में भी है, केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरे, बाद में बोलते केशव धृता वराह रूपा, बाद में बोलते केशव धूता नरहरि रूपा, बाद में कहते हैं केशव धृता राम शरीर जय जगदीश हरे। तो ऐसे 10 श्लोक हैं और 10 अवतारों का वर्णन किया गया है, और 10 अवतार कैसे कैसे कभी कभी आए और क्या क्या किया उन्होंने, किस समय आए वो, क्या संकट था उस समय, पूरा वर्णन जयदेव गोस्वामी ने दिया है। जयदेव गोस्वामी बहुत बड़े संत हुए हैं, कुछ 5वीं या 6वीं सदी में उनका जन्म हुआ था और बहुत बड़े विद्वान थे वो, बहुत बड़े विद्वान। उन्होंने मायापुर में एक जगह है, उनका नाम है कोलाद्वीप में जगह है वो, चंपाहाटी नाम की जगह है, वहां पर उन्होंने बैठकर ये भजन लिखा था, भगवान के 10 अवतारों का वर्णन किया था। तो पहले अवतार कौन है, मत्स्य अवतार, भगवान ने मछली का अवतार लिया और वेदों को बचाया। फिर कुर्मावतार मतलब कछुआ बने भगवान, और समुद्र मंथन पे उनपे सर पे उनके पीठ पर पर्वत को लेकर घिसाया गया, मंथन किया गया। फिर मत्स्य कुर्म वराह, भगवान ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को मारा। फिर नरसिम्हा अवतार लेकर किसको मारा, बोलो हिरण्यकशिप को मारा, बहुत भयंकर राक्षस था वो। फिर वामन देव का अवतार लिया, केशव धृता वामन रूपा जय जगदीश हरे। वामन देव ने क्या किया, दो पग में पूरा भूमि नाप लिया और तीसरा पग महाबली के सर पे रखा, उसका गर्भ हरण कर दिया और देवताओं को बचाया। देवताओं के भाई के रूप में आया, देवताओं के माता के गर्भ में जन्म लिया उन्होंने। फिर वामन देव के बाद कौन आया, मत्स्य, कुर्मा, वराह, नरसिंह, वामन, फिर परशुराम। सहावा अवतार परशुराम प्रगटला। परशुराम ने क्या किया, परशुराम भगवान के आने के समय इतना खराब समय था कि जो राजा बने हुए थे लोग, राजा बनकर उनको भगवान की सेवा करके प्रजा की सेवा करनी है, लेकिन राजा बनकर वो खुद का भोग ले रहे हैं और जनता को शोषण कर रहे हैं, तो उन्होंने क्षत्रियों का नाश करने के लिए, राजाओं का नाश करने के लिए अवतार लिया। 21 बार पृथ्वी का प्रदक्षिणा किया और जितने जितने राक्षस राजा थे उनका कत्ल कर दिया उसने। तो परशुराम जी का एक विशेष परशु था उनके हाथ में, वो परशु लेकर उन्हें 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया। सब राजा जो है ना घबर घबर के, मतलब इतने वीर राजा थे क्षत्रिय राजा, वो भी घबर के भर के भागते थे, उनसे बचने का एक ही रास्ता था, वो क्या था, अगर आप यज्ञ करने को बैठे हैं तो राजा नहीं मारेगा आपको, मतलब परशुराम भगवान नहीं मारेंगे। तो जैसे मालूम पड़ता है कि आ रहे हम लोग का ऐसे थे, आगे आले 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 आ रहे, ऐसा घोषणा होती थी तो राजा तुरंत ऋषि मुनि को बुला के तुरंत यज्ञ में बैठता था, कुछ ना कुछ यज्ञ, कोई अरे कौन सी पूजा करो, कोई भी पूजा करो लेकिन कर जरूर, हमको बिठा के पूजा करना, बस एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये था, अगर कोई विवाह कर रहा है, समझो शादी कर रहा है, तो फिर वो उसको नहीं हाथ लगाएंगे। और तीसरा एक उसका बचाने का उपाय था कि अगर वो औरतों के बीच में बैठा हुआ है, समझो आप लड़कियां सब औरतें यहां पर बैठी है गोल करके, उसके बीच में मैं बैठ गया तो मुझ पर वो हमला नहीं करेंगे। उनको कहते हैं नारी कवच, मतलब नारी का कवच लेकर जो बैठा है उसको, वो उसको देखकर शर्म आती थी उसको कि यार इसको क्या मारूंगा मैं, ये तो नारी को बीच में लेकर बैठा हुआ है। तो ऐसे 3-4 कारण थे, जो जो बचे वो ये करते थे, मतलब जानबूझकर ये यज्ञ के लिए बैठते थे या शादी के लिए बैठते थे। राजा को क्या है, एक शादी हुई 10 हुई तो भी प्रॉब्लम नहीं, राजा को 50 रानी 1000 रानी भी हो सकती है। तो कहते हैं कि दशरथ राजा को पता था कि ये भगवान है स्वयं, तो उनको लड़ने की इच्छा नहीं थी उनके साथ, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान के अवतार है ये। तो उनके पास 3 पत्नियां थी, कौन कौन थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, 3 पत्नियां थी प्रधान। और 3 पत्नियों के बाद में जब उनका आक्रमण होने लगा परशुराम जी का, तो वो हर बार एक नई स्त्री के साथ विवाह करने के लिए बैठ जाते थे। और कहते हैं कि 350 बार परशुराम जी वहां से गुजरे अयोध्या से अटैक करने के लिए, मारने के लिए, लेकिन वो 350 बार 350 नई नई राजकन्याओं के साथ में दशरथ महाराज ने विवाह किया। इसलिए कितनी पत्नी होगी उनकी टोटल, 3 आप कथा सुन रहे ना, मैंने क्या बताया आपको, 3 पहली थी ना पत्नियां और 350 और हो गई, तो कितनी हो गई, 353। तो ये हुआ परशुराम जी का, और परशुराम जी ने बाकी सब राजाओं को मार दिया। 21 बार पृथ्वी का भ्रमण किया उन्होंने, राउंड लगाया और जितना भी हो सके क्षत्रियों को मार डाला। फिर उन्होंने, क्योंकि वो मनुष्य रूप में अवतार लिया था ना उन्होंने, इसलिए उन्होंने पश्चाताप के लिए एक आदर्श हमारे लिए, उनको जरूरत नहीं करने की, भगवान को क्या जरूरत है, लेकिन हमारे लिए आदर्श होने के लिए उन्होंने क्या किया, एक भूमि को निर्माण किया, गोवा के आगे खड़े हो गए वो और परशु फेंका उन्होंने कन्याकुमारी तक, और 100 किलोमीटर का चौड़ा और 1000 किलोमीटर का लंबा जितना भूमि का टुकड़ा है समुद्र से ले लिया, समुद्र को पीछे हटा लिया, उतना जगह उन्होंने समुद्र से ले लिया, समुद्र को हटाकर, और सारा भूमि जो है वो 10 ऋषियों को बांट दिया उन्होंने। बोले आप लोग यहां पर भजन करो पूजन करो और मेरा आशीर्वाद रहेगा आपके लिए। हमारा गांव जो है ना केरला और हमारा मैंगलोर कर्नाटक वो सब उपट्टे में आता है, इसलिए हमारे गांव को कहते हैं परशुराम क्षेत्र। तो परशुराम क्षेत्र ने वहां पर आशीर्वाद दिया उन्होंने कि इस क्षेत्र में जो भी आप लोग रहेंगे कभी यहां पर कुछ कमी नहीं होगी, बारह महीने घनघोर वर्षा होती रहेगी, हरियाली रहेगी, फल फूल धान्य जितना भी चाहिए उतना भरपूर मात्रा में मिलता रहेगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा और सब लोग शांति से रहेंगे। अरे आप यहाँ पर जब ही सूखता है ना सब कुछ गर्मी से, तब वहाँ पर पूरी हरियाली होती है, इतनी हरियाली है, इतने बड़े बड़े नदियाँ हैं। आप लोग बॉम्बे से गाड़ी में बैठोगे ना, ट्रेन में बैठोगे तो हमारे गाँव तक कुछ 25-30 नदियाँ आती हैं, और हमारे गाँव से आगे केरला जाओगे तो और 25-30 नदियाँ मिलेंगी आपको। हर 5 मिनट के बाद ट्रेन में नदी मिलेगी आपको, और सूखी हुई नहीं मिलेगी ऐसे, यहाँ कैसे कोई तरना इतनी सी, ऐसा नहीं, इतने बड़े बड़े पात्र समुद्र से दिखाई पड़ेंगे आप, वो सब परशुराम जी का वरदान है। तो केरला और कन्याकुमारी तक जो है वो ये परशुराम क्षेत्र फैला हुआ है, और सब जगह परशुराम जी का आशीर्वाद है, इसलिए हमारे गांव में परशुराम जी को बहुत मानते हैं, परशुराम क्षेत्र। तो उसके बाद में किसका अवतार हुआ? छठवां अवतार परशुराम जी का हुआ। सातवां किसका हुआ? प्रभु रामचंद्र का। अभी समझ में आया ना हमारी कथा कहां से कहां से कहां से घूमते घूमते कहां आ गई। तभी प्रभु रामचंद्र का जन्म होने के पहले दशरथ महाराज थे, और दशरथ महाराज जब जवान थे तो उनकी 353 रानियां हुई, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि उनके राज्य में एक था वर्षा, रात को ही केवल वर्षा होती थी, कभी दिन में वर्षा नहीं होती थी। एक नदी थी सरयू नाम की अयोध्या में, उसमें कहते हैं कि इतनी हजारों नदी आके मिलती थी कि कभी उस नदी में पानी कम है ऐसा महसूस नहीं होता था। और राजा के पास में ऐसी सुंदर योजना थी कि नदी में जितना पानी है उसको बचा के रखते हुए अगर एक साल वर्षा नहीं भी हुई फिर भी पूरा चाहिए उतना जल हुआ करता था, इतनी समृद्धि थी। और वर्णन किया है कि कोई भी अयोध्यावासी कभी भी अपनी राज्य की सीमा को देख नहीं पाता था कि भाई यहाँ अपना राज्य एंड हो रहा है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे गुजरात में तो बोलेंगे यहाँ से अपना बॉर्डर खत्म होता है, पाकिस्तान शुरू होता है, पेशावर चालू हो जाएगा, थोड़ा आगे जाएंगे तो बॉर्डर मिलेगा ना आपको, वाघा बॉर्डर मिलेगा आगे जाके। लेकिन अयोध्या वासियों को कभी भी अपने अयोध्या का बॉर्डर दिखाई नहीं पड़ा, इतना राज्य था विस्तार पूर्वक। हमको लगता है कि आज ही हम लोग ने 110 मंजिल का बिल्डिंग बनाया है, ऐसा आपको लगे कहीं कितना प्रगति किया है साइंटिस्ट लोगों ने, 110 फ्लोर का बिल्डिंग बनाया है, लेकिन उससे भी ऊंचे ऊंचे प्रासाद महल दशरथ के समय बने हुए थे, इतना समृद्धि था, कोई व्यक्ति गरीब नहीं था, सबके घर धन धान्य रत्न हीरे माणिक सोना सब कुछ भरपूर मात्रा में था। राज्य में पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति मांसाहार नहीं करता था, कोई शराब नहीं पीता था, कोई जुआ नहीं खेलता था, कोई वेश्या व्यवस्थी व्यवसाय नहीं करता था, कोई व्यभिचार नहीं करता था, चाहे वो शूद्र हो या ब्राह्मण हो या बिजनेस करने वाला हो खेती करने वाला हो, पाप कर्म कोई करता नहीं था, इतना राजा दशरथ का पावर था। शक्तिशाली होने पर भी वो हृदय से बड़े ऋषि जैसे थे, इतने उनका पवित्रता थी। दशरथ एक ऋषि थे, राज ऋषि, राजा होने पर बल भी था उनके पास, शस्त्र चलाने की विद्या भी थी, और शत्रु पर पूरे वर्ल्ड में उनका राजा था, उनका राज्य पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि वो खाली अयोध्या के राजा थे। तो ये भगवान के एक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, उनका नाम है सनत कुमार, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, 4 कुमार हैं वो, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद मुनि के छोटे भाई है वो। तो वो संन्यास्त बने, ऋषि बने बहुत बड़े। उन्होंने बहुत पहले सृष्टि के निर्माण के समय पर एक भविष्यवाणी करके रखी थी कि आगे जाकर जब त्रेता युग आएगा तो दशरथ नाम का राजा आएगा और वो अश्वमेध यज्ञ करेगा। अभी राजा के पास इतनी समृद्धि थी, इतना धन था, इतने लोग अच्छे थे, भक्ति करने वाले थे, शांति थी, कोई पाप नहीं है, सब जगह आनंद ही आनंद है, 350 बहुत सुंदर बहुत सद्गुण संपन्न पत्नियां हैं, 3 सुंदर पटरानियां हैं, एक कौशल देश की, एक मगध देश की, एक सौमित्र देश की, सब जगह पर बड़े बड़े राजाओं की कन्या थी वो। लेकिन इतना सब होने पर भी राजा को एक बड़ा दुख था। क्या हो सकता है दुख? हाँ बोलो बोलो। इतना सब होने पर भी राजा बड़ा दुखी हुआ करता था, इतना अच्छा राज्य है, इतना सब जगह पर वर्ल्ड में राजा बना हुआ है, कोई विरोध में कोई नहीं है, सब लोग उसके राजा भी सेवक थे उसके, मतलब क्या हुआ, चक्रवर्ती सम्राट था वो, पूरे चक्र में उसका साम्राज्य था, फिर भी उसको पुत्र नहीं था, इसलिए बड़ा दुखी था। तो वशिष्ठ ऋषि उनके गुरु थे, उन्होंने बोला कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना पड़ेगा। फिर किसी और ऋषि ने आके बताया कि हमने शास्त्र में पढ़ा है कि चार कुमारों ने ये भविष्यवाणी की थी कि आपके हाथ से यज्ञ होने वाला है। उसमें क्या होता है, एक घोड़ा होता है जिसको बहुत सजाकर, अलंकार पहनकर, बहुत सारे वस्त्र पहनकर, मतलब एकदम राजा की तरह बनाकर उसको भेजते थे, वो आपके राज्य में आएगा, मतलब क्या है, आपको चैलेंज दे रहा है वो, आप हाँ बोलेंगे फ्रेंडशिप में तो वो युद्ध नहीं होगा, अगर आप चैलेंज करेंगे तो दशरथ की सेना आएगी, आपको युद्ध, आपसे युद्ध करेगी, आपको परास्त करेगी और फिर आपको अपना नौकर बनाएगी और घोड़ा आगे जाएगा। ऐसे पूरे वर्ल्ड में चारों दिशाओं में घूमेगा वो, जितने देश है सब जगह जाएगा, और जहां जहां घोड़ा भेजा जाएगा तो वो राजा आएगा और प्रणाम करेगा, मतलब नो युद्ध, युद्ध नहीं होगा। ऐसे कहते हैं कि दशरथ महाराज ने जब ही घोड़े को भेजा, वर्ल्ड के किसी भी राजा ने उनसे युद्ध नहीं किया, सब ने प्रणाम किया और अपना दोस्ती स्वीकार कर दिया। तो दशरथ का जो अश्वमेध यज्ञ का अश्व था, घोड़ा था, वो किसी भी जगह युद्ध नहीं हुआ उसका, इतनी ख्याति थी उसकी, इतना लोकप्रिय था दशरथ राजा। और जब पूरा वर्ल्ड में सब जगह का सबका खंडनी यानी कि टैक्स लेकर लौट के आया, तो अश्वमेध करने का हो गया कि अभी सब जगह जाके आया ना, अभी हर एक राजा ने शरणागति स्वीकार कर ली है, तभी अश्वमेध करने के लिए आप योग्य हो गए हो। तो वशिष्ठ ने कहा कि अभी इसके लिए ऋषि की जरूरत है, तो ये भी भविष्यवाणी करके हो चुकी है कि आपका जो ऋषि है वो ऋषि श्रृंग ऋषि होगा। उसका मतलब क्या हुआ, जिसको जन्म से एक सिंह था यहां पर सामने, जन्म से, इसलिए उसका नाम था ऋष्य श्रृंग, मतलब जिसको, जो ऋषि है लेकिन जन्म से ही उसको श्रृंग लगा हुआ है, वो विभांडक नाम के ऋषि का पुत्र था। और विभांडक नाम का ऋषि इतने महान ऋषि थे, वो तपस्वी ऋषि थे, कि उन्होंने अपने इस पुत्र को जंगल में रखा था, किसी भी स्त्री का दर्शन उसको होना नहीं चाहिए, ऐसा उसका प्रण था। तो जब ये बालक था तब से उसकी पत्नी को उन्होंने अपने से दूर करके कहीं और जगह रखा और अपने जंगल के आश्रम में खुद और अपने पुत्र को रखा। समझा, अभी आपका बच्चा है, लड़का है, इतना था, इतना था, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, उतना बड़ा हो गया, लेकिन आप, उसने कभी लड़की को देखा ही नहीं, तो कैसे पहचानेगा वो कि औरत क्या होती है, उसके लिए औरत थी है ही नहीं कोई, सब आदमी ही आदमी है। तो वो युवा अवस्था में आ गया, फिर भी उसने कभी भी एक ही स्त्री को देखा नहीं था, और उसको एक प्रण था कि जंगल के बाहर जाना नहीं, उसको किधर भी जो भी है जंगल में रहना है, जंगल के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जंगल में स्त्रियां नहीं आती कभी, गृहस्थ आश्रम शहर में होता है ना, जंगल में कौन स्त्री आएगी, इसलिए उसको बोला जंगल के बाहर नहीं जाना है। और कभी भी उसने, उस ऋषि ने कंदमूल के अलावा कुछ खाया नहीं था, मतलब अग्नि जला के हम लोग खाना बनाते ना, चाहे वो चूल्हे का हो या किस कोयले का हो, अग्नि जला कर जो पकाते हैं ना खाना, चावल पकाते हैं या गेहूं का रोटी पकाते हैं, कुछ नहीं, केवल फल और फूल और कंदमूल बस, जंगल में मिलता है फल और फूल पेड़ पर, केवल वही खाया था उसने, उसको ना पका हुआ अन्न कोई मालूम नहीं था, कोई मिठाई विठाई कुछ मालूम नहीं था, खाली फल फूल खा के रहता था। तो यहां पर राजा को बताया गया कि उसी के द्वारा आपको यज्ञ करना है, तो उसको भाई लेके कैसे आएंगे, उसके पिताजी का ऑर्डर किधर है। तो उन्होंने अपने, एक दोस्त था उनका, उनका नाम था राजा रोमपाद, आपने नाम नहीं सुना होगा उसका, उसका नाम क्या था, राजा रोमपाद। रोमपाद ये दशरथ का मित्र था बहुत, और दशरथ को ऐसा नहीं कि कोई बच्चा नहीं था, ऐसा नहीं था, उनको एक कन्या हुई थी, कन्या, उसका नाम था शांता देवी, लेकिन पुत्र नहीं था राज्य करने के लिए। तो रोमपाद को कुछ पुत्र और पुत्री भी कुछ नहीं था, तो उसने दोस्ती में अपनी कन्या शांता देवी को रोमपाद को गोद में दिया था। तो रोमपाद के राज्य में सब अभी कैसे लाया उसको, तो रोमपाद महाराज के पास उन्होंने बताया कि रोमपाद महाराज के पास में वो ऋषिसंघ मृजी मुनि जो है वो आ चुका है। कैसे आ चुका है, तो उसकी कहानी बताता हूं मैं। कहानी यह है कि रोमपाद महाराज के राज्य में अकाल पड़ा हुआ था, वर्षा ही नहीं हो रही थी, तो किसी ने कहा कि अगर ऋषिसंघ मृजी मुनि को लेके आएंगे ना, उनके चरण रोमपाद राजा के यानी कि अंग देश में, उनका राज्य था, चरण पड़ेंगे तो बहुत वर्षा होगी। तो कैसे लाए, कैसे? विभांडक ऋषि तो छोड़ेंगे नहीं उसको। तो उन्होंने क्या किया, बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को ऋषि बनाया, मतलब ऋषि का भेष बनाया, बालों को जटा बना दिया और गेहुआ वस्त्र पहन के, बाकी सब स्त्री का अलंकार निकाल लिया लेकिन सारा शरीर ढक के ऋषि बना दिया उनको सबको। लेकिन बहुत सुंदर थी वो औरतें, लेकिन वो ऋषि बनाकर उनको भेज दिया जंगल में, और उन्होंने वहीं डेरा जमाया अपना जहां पर इस विभांडक ऋषि और ऋषि श्रृंग का आश्रम था। तो एक दिन फल बिनते बिनते वो लड़का जो है वहां पहुंच गया, तो ये सब ऋषि बने हुए लड़के वहां पहुंच गई और उन्होंने कहा ये लो, उनको मिठाई खिलाया। तो पहली बार उसने मिठाई खाया, उसको पता नहीं मिठाई क्या होती, और बहुत मीठी मीठी बातें की उनसे, ऐसी आवाज उसने कभी किसी की सुनी नहीं थी, क्योंकि वो उसको लगा ये तो अजीब आदमी लोग हैं, इनका आवाज भी अलग है, इनका शरीर भी अलग है, ये कितनी ब्यूटीफुल दिखती हैं सब लोग, ऋषि लोग, हम तो जंगल में रहने वाले लोग, हमारा तो अलग शरीर का स्वरूप है, लेकिन ये भी ऋषि हमारे जैसे ही हैं, इनके भी जटाएं हैं हमारे जैसी, लेकिन ये कितनी कोमल लगती है, कितनी सुंदर लगती है, इनकी आवाज कितनी घंटा की तरह सुंदर है। तो उन्होंने उनको मिठाई खिलाया, अपने शहर के अच्छे अच्छे कुछ चीजें ला के खिलाई, तो उनको लगा ये भी कुछ फल है, ऐसा लगा उनको, अलग प्रकार के फल कहाँ से लाए होंगे ऐसा लगा, उनको लगा नहीं कि ये दूध से बना हुआ, अग्नि से बनाया हुआ ये मिठाई है, ऐसा मालूम नहीं पड़ा उनको। और बहुत देर मीठी मीठी बातें हुई उनकी, और जाने के समय जब इसको अपने आश्रम में जाने का समय हो गया, तो हरेक ऋषि ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर एक ऋषि जो कन्या थी उसने उसको गले लगाया। गले लगने पर उसको एक तो अजीब अनुभव आया, बोले तो ये तो बहुत मधुर बात है, ये सब ऋषि है इनका, इनको गले लगाने से इतना आनंद क्यों आया। जब लौट के आया तो वो बहुत परेशान हो गया, उसको मन में बहुत विचलित हो गया वो। सेकेंड डे जब वापस लौट के आया तो वापस वो ऋषि वही थे, उन्होंने कहा चलो हम हमारे जैसे और अद्भुत ऋषियों से आपको मिलाएंगे, हमारे साथ चलो, और जो फल आपको हमने खिलाए मीठे मीठे वो और भी खिलाएंगे आपको, चलो और चलो हमारे साथ में चलो। तो मोहित होकर वो ऋषि उनके साथ चले गए और रोमपाद राजा के अंग देश में प्रवेश करते ही उन्होंने अपना भेष पूरा निकाल दिया पूरा। तो उनको समझ में आया कि ये आदमी लोग नहीं है, कोई अलग ही लोग है ये, उनको पता नहीं था कि स्त्री क्या होती है। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये रोमपाद राजा के अंग देश में प्रवेश किया, उसने उसका पैर पड़ा, उसका पैर पड़ते ही घनघोर बादल आ गए, बहुत भयंकर वर्षा हो गई और सब राज्य में वर्षा ही वर्षा हो गई, सब जगह तालाब भर गए, नदियां भर गई और हरियाली छा गई और सब जगह पर अकाल नष्ट हो गया। तो रोमपाद राजा इस ऋषि का प्रभाव देख के इतना प्रभावित हो गया, बोले कितने महान ऋषि है ये, अभी कुछ किया नहीं उन्होंने, खाली आए वो, खाली पैर रखा हमारे राज्य में तो इतना वर्षा हो गया। तो बड़ी प्रेम से और आदर से आए वो, उनका पूजा किया उन्होंने, सम्मान किया, आदर सत्कार किया और कहा कि ये मेरी कन्या है शांता, इससे आप विवाह करो। तब उसको सब समझ में आया कि ये सब क्या इनकी योजना थी, लेकिन राजा ने इतनी प्रेम से सत्कार किया और कन्या को अर्पण किया तो फिर वो उनका विवाह हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, वो रोमपाद राजा के जमाई बन गए, लेकिन लड़की एक्चुअली किसकी थी, वो दशरथ महाराज की थी। तो बताया कि ये जो ऋषि शृंग ऋषि है वो अभी रोमपाद के जमाई बनकर बैठे हुए हैं, अभी आपके मित्र रोमपाद है क्योंकि आपने लड़की उनको दे दी है, तो इसलिए आप उनको विनती करो कि हमारे राज्य में आके अश्वमेध यज्ञ करो। तो फिर वो ऋषि अपनी पत्नी शांता देवी जो दशरथ की पुत्री है उसके लेकर वो आया और दशरथ के राज्य में अयोध्या में बैठकर उसने यज्ञ किया। उसने कहा कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना पड़ेगा। पुत्र कामेष्टि मतलब क्या होता है, पुत्र की इच्छा से किया हुआ यज्ञ, उसको कहते हैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ। पहले अश्वमेध करो, अश्वमेध के बाद में आप पुत्र कामेष्टि करो। तो मैंने आपको बताया कि घोड़ा सब जगह घूमा, किसी ने विरोध नहीं किया, तो लौट के आया, अश्वमेध यज्ञ हुआ, उसके बाद में ऋषि श्रृंग ऋषि ने दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। इसके होने के पहले एक बीच में घटना हुई, सुनना है आपको, सब लोग सुन रहे हैं ना, हाँ हरे कृष्णा। जब दशरथ राजा एक बार, उसको शिकार खेलने की बहुत इच्छा थी और शिकार में बहुत कुशल भी था वो, इतना कुशल था दशरथ राजा कि वो किसी को देखकर बाण मारने की जरूरत नहीं थी उसको, जहां से आवाज आ रही है वहां पर वो बाण मार सकने की शक्ति थी उसके अंदर। उसको कहते हैं आवाज का लक्ष्य भेद। अंधेरे में भी समझो आपको इधर से आवाज आई तो उधर वो ऐसा उल्टा बाण मारेगा, बराबर उसको सीने में लगेगा। तो शिकार भी वो अंधेरे में खेलता था, जानबूझ के अपनी कला को बनाए रखने के लिए अंधेरा होने पर शिकार खेलता था, और झाड़ी में जाकर बैठता था, और नदी किनारे अगर आवाज आई, मतलब कोई शेर पानी पी रहा है, समझो कोई सिंह पानी पी रहा है, या कोई और कोई बड़ा जानवर पानी पी रहा है, तो वो आवाज पानी की सुन के वहां पर बाण मारता था और वो जानवर की हत्या करके शिकार खेलता था। ऐसे ही वो शिकार खेलने एक बार गया था, अंधेरे में बैठा हुआ था, जानबूझ के अंधेरे में जाके बिना देखे बाण मारे, तो उसको नदी में पानी निकालने की आवाज आई, तो उसको लगा वो शेर आया होगा, तो उसने बाण चलाया और छोड़ दिया बाण को। बाण चलाते ही किसी बालक के जोर से चिल्लाने की आवाज आई, मतलब कोई मर रहा हो, ऐसे जोर से चिल्लाया बालक, तो उसको आश्चर्य हुआ, ये तो जंगल के रात में अंदर इधर बालक कहां से आया। तो जहां से आवाज आई थी और जहां उसने बाण मारा था वहां पर भाग भाग के गए वो देखने के लिए। देखा तो क्या, एक छोटा सा बालक, 5-6 साल का बालक जो है, उसके सीने में दशरथ ने मारा हुआ बाण पूरा आर पार घुसा हुआ है, और खून की नदी बह रही है, और वो चीख रहा है, पुकार रहा है, मर रहा है वो। तो बड़ा दुख हुआ उसको, अरे मैंने तो गलती कर दिया, मैं तो खेल खेल में प्रैक्टिस कर रहा था, मेरे मुझे लगा शेर आया हुआ है, पानी पीने का आवाज आया, ये तो लोटा डाल के नदी में से पानी निकालने की आवाज थी वो, और एक बालक जो है उसको मालूम पड़ा कि अंधे माता पिता उसके, उसका नाम था श्रावण बाल, उसके अंधे माता पिता को लेकर कावड़ी में लेके जा रहा है वो, उसको प्यास लग रही थी इसलिए वो रास्ता में रुककर नदी से पानी निकालकर उनको पीने के लिए देने वाला था, और वो जो आवाज आया पानी निकालने के समय उसमें से बाण चलाया उसने, वो सीने में बाण घुस गया। पिता को मालूम नहीं, वो तो दूर बैठे हुए हैं, उनको पता नहीं चल रहा है। कुछ ही देर में ये समझ में आया कि मैंने गलती हो गया, उसमें वो बालक मर गया उनके सामने ही। और बालक ने मरते हुए बताया कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उनको ये पानी पिला दो आप जाके। तो कुछ समझने के पहले ही बालक इतना बोल के खत्म हो गया। राजा को बड़ा दुख हो गया, राजा ने पानी भरा लोटे में से और सीधा वो अंधे माता पिता के पास में गया, और माता पिता अंधे थे लेकिन कान उनका बहुत तेज था, उनको पता था कि पानी लेके मेरा बेटा नहीं आ रहा है, कोई दूसरा ही आदमी आ रहा है। जैसे आवाज आई चलने की तो समझ गए कि मेरे बेटे के चलने की आवाज नहीं है ये, तो उसने एकदम संकुचित होकर, कौन हो तुम? तो उन्होंने कहा मैं राजा दशरथ हूं, मैं आपको पानी पिलाने के लिए आया हूं। बोला मेरा पुत्र किधर है? तो उन्होंने सच सच बताया कि मेरे बाण से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई है। तो उनको प्यास लग रही थी, वो प्यास पे सब भूल गए, इतना दुख हुआ कि अपना पुत्र का एक राजा के हाथ से बाण लगकर मृत्यु हो गया, वो भी खेल खेल में, वो शिकार खेलने के लिए आया था। तो गुस्से से और प्रेम प्रेम से वश होकर, दुख से वश होकर उस माता पिता ने राजा को उरत शाप दे दिया तुरंत कि तुम भी पुत्र के शोक में तड़प तड़प के मरोगे, और वो भी रोते रोते बिना पानी पिए उधर मर गए। उसी समय, कुछ ही समय में उनके सामने घटना हुई है, अभी अभी छुपके बैठे झाड़ी में छुपके बैठे थे, बाण चलाया, सो शिकार करने आए हैं, और कुछ ही मिनटों में पूरा सीन बदली हो गया। बहुत दुखी होकर घर पे लौट के आए। इसका मतलब क्या हुआ कि बिना समझ पूछ के कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जरा सी आवाज आए इसलिए बाण नहीं मारना चाहिए, पहले पता करो कि आवाज बाण बच्चे की आ रही है कि शेर की आ रही है कि हाथी की आ रही है कि सिंह की आ रही है, पहले कंफर्म करो कि भाई शेर ही आप पानी पी रहा है तो शिकार कर सकते हो, लेकिन आओ ना दिखाना ताओ, जैसे आवाज आई तो बाण चला दिया बिना सोचे। उसका परिणाम क्या हुआ, कुछ क्षणों के अंदर सब कुछ उल्टा हो गया। उसके बाद में क्या हुआ, बीच में और एक घटना हुई, सब लोग सुन रहे ना, एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा था ना कि दशरथ राजा के राज्य में इतना नदी में पानी था कि एक दो साल वर्षा भी नहीं हुआ तो चलता था, किसी को पता भी चलता नहीं था। ऐसे कहते हैं कि इतना शरीर नदी के अंदर जल था कि 10 साल अकाल पड़ा अयोध्या नगरी में, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि अकाल पड़ा हुआ है, इतना पानी है। लेकिन बाद में मंत्रियों ने बताया राजा को जाकर, राजा 10 साल तक अभी वर्षा नहीं हुई है और हमने जो पानी संभाल के रखा था उस पर राज्य चल रहा है। राजा ने पूछा, ज्योतिष को बुलाया, पूछा क्या हुआ, देखो जरा कुंडली में क्या लिखा है राज्य के। तो उन्होंने कहा कि शनि की वक्र दृष्टि हमारे राज्य पर पड़ी हुई है, अब तक हमारे राज्य में शनि की दृष्टि कभी पड़ी नहीं थी, शनि महाराज ने अपने राज्य को एग्जेम्प्ट कर दिया था, लेकिन 10 साल से अभी शनि के दृष्टि से सब लोग जल रहे हैं और वर्षा नहीं हो रही है। ये समझते ही दशरथ महाराज ने अपनी चतुरंगी सेना निकाली और खुद सेनापति बनकर शनि को आह्वान करने के लिए निकल गए वो, और आकाश में वो उनका सामना हुआ। शनि महाराज भी समझ गए ना कि राजा आक्रमण करने आ रहा है, शनि महाराज भी अपना रथ लेकर वहां पर पहुंच गए। शनि महाराज सूर्य के पुत्र हैं, यमराज यमुना के भाई हैं वो शनि महाराज, उनको बड़ा पावर दिया भगवान ने। अरे ऐसे कहते हैं कि दशरथ अपनी सेना लेकर आक्रमण कर रहा है, शनि खाली वहां से आए और उन्होंने दशरथ महाराज को केवल देखा, जैसे ही देखा दशरथ महाराज बेहोश हो गए, उनका रथ भी जलने लगा, घोड़े भी जलने लगे, खाली देखने से, युद्ध युद्ध करने की जरूरत नहीं है, इतने पावरफुल शनि। तो जैसे ही वो बेहोश हो गए, घोड़े भी बेहोश हो गए, तो आकाश से गिरने लगे वो तूफानी गति से। उस समय वहां पर आकाश में एक पंछी जो है ना गिदड़, वो उड़ रहा था, क्या नाम था उसका, जटायु। उसके इतने बड़े पंख थे कि एक पंखे का छोटा सा हिस्सा के ऊपर उसने वो रथ को झेल लिया, इतने गति से नीचे गया वो, मतलब वो रथ जो है वो आकाश से नीचे आ रहा है, उससे भी गति से नीचे गए वो उसके, और पंख को फैलाया और कैच किया उन्होंने घोड़ों को और राजा दशरथ को रथ के साथ कैच किया, और फिर पंख में बिठाकर जमीन पर लेके आया, उसका शुश्रूषा किया, उसको दवाई दिया और होश में लाया। जैसे ही होश में लाया दशरथ ने पूछा, कहाँ है शनि महाराज, आक्रमण? तो जटायु ने कहा कि अरे महाराज आप जमीन पर हो, बोला मैं यहां पर कैसे आया? उन्होंने कहा कि आपको शनि महाराज के दृष्टि से, उसकी उष्णता से आप बेहोश हो गए थे और गिर रहे थे, तब मैंने आपको पकड़ा और आपको नीचे लाया और आपको होश में लाया, आप मुझे वापस लेके चलो। तो अपने पंख पर बिठाकर जटायु उनको फिर आकाश में लेके गया, और फिर शनि महाराज वहां खड़े थे, उन्होंने कहा आक्रमण। तो शनि महाराज बहुत प्रभावित हो गए, अरे मेरे वक्र दृष्टि से बेहोश होकर, जो बेहोश होकर गिर गया था उसको इतनी हिम्मत की मेरे सामने आके फिर खड़ा होकर ललकारे मुझे, ये उसकी वीरता को देखकर वो प्रसन्न हो गए। बोले कोई बात नहीं, मैं वादा करता हूं आपको कि मेरी वक्र दृष्टि आपके राज्य पे वापस नहीं आएगी, आप इतने वीर हो मेरे सामने कोई टिक नहीं पाता है, खड़ा होने का तो सवाल ही नहीं, और आपको आह्वान दे रहे हैं मुझे युद्ध करने के लिए, इतनी आपके अंदर वीरता है, आपकी वीरता को देखकर बड़ा प्रसन्न हूं मैं, जाओ मैं आपसे युद्ध नहीं करता, और ये वादा भी करता हूं कि जिस वक्र दृष्टि से आपके राज्य में 10 साल से अकाल पड़ा हुआ है वो आज से कैंसिल, बहुत भयंकर वर्षा होगी और कोई चिंता मत करना, वापस मेरी 7.5 शनि दशा आपके राज्य पर नहीं आएगी। इतने महान राजा थे दशरथ महाराज। तो उस समय वो जो थे जटायु गिदड़, उनको दशरथ महाराज ने बोला तुमने मेरी जान बचाई, ना केवल जान बचाई राज्य को भी बचाया, क्योंकि मुझे तो जीवित रखा राजा को, और मैं वापस खड़ा हो गया, इसलिए राजा के और राज्य के ऊपर से शनि की दृष्टि भी निकल गई, मतलब आपने बड़ा काम किया, जो चाहे मांग लो। तो गिदड़ बोलते हैं जटायु जी कि आपका जो पुत्र होगा ना उसको मुझे दे देना, जब आपका पुत्र होगा तब मुझे दे देना। तो यहां पर भी आचार्य लिखते हैं कि जब कुछ हम बोलते हैं ना कभी भी, क्या चाहिए बोलो, जो चाहे मांग लो, ऐसे बोलने के पहले सोचना चाहिए कि गिदड़ क्या मांग सकता है आपसे, उसको थोड़ी आइडिया थी क्या मांगेंगे, उसको पुत्र भी हुआ नहीं अब तक, वो दुखी है बेचारा, उसको पुत्र नहीं हो रहा, इसलिए उसने क्या बोला, जब पुत्र होगा तो सबसे बड़ा पुत्र तुम मुझे दोगे। इसके बाद में ये सारी घटना हुई, अश्वमेध यज्ञ हुआ, ऋषि श्रृंग आए, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, फिर उसने क्या किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और फिर क्या हुआ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में से प्रसाद उत्पन्न हुआ, खीर का प्रसाद, और फिर ये ऋषि ने क्या किया, राजा को दिया प्रसाद को, खीर को दिया, और बोला कि अपनी पत्नियों में बांट दो, फिर आपको यथावकाश 4 पुत्र होंगे। तो राजा ने क्या किया, ये 3 में से 2 रानियों में उन्होंने 2 भाग कर दिया, समझो एक पात्र दिया उनको, तो आधा उसने राजा ने क्या किया, कैकेयी को दिया, तो कैकेयी सबसे प्रिय पत्नी थी उनकी, बहुत सुंदर बहुत सद्गुण संपन्न थी वो, उसको आधा दिया, और आधा कौशल्या को दिया। दोनों रानियों का थर्ड रानी पर बहुत प्रेम था, तो उन्होंने अपना अपना आधा आधा करके सुमित्रा को दे दिया। तो सुमित्रा को कितना मिला? दो पाव, है ना, आधा आधा मिला ना, फिर आधा का आधा, आधा का आधा, दो पाव उसको मिले और पाव पाव उनके पास बचे। ये सब जब डिवीजन कर रहे थे ना, यहां से वहां आधा करके दे रहे थे, उसमें से एक बड़ा पक्षी आया और एक बड़ा हिस्सा उसमें से उठा के लेके गया। वो किसको समझ में नहीं आया, उनका तो आराम से अपना बंटवारा चल रहा है। उतने में जब कहां पक्षी आया, कभी उठाया कभी भाग गया, समझा ही नहीं किसी को। और वो पक्षी गया किधर मालूम है? एक हम्पी गांव है, हम्पी साउथ इंडिया में, उधर आंजनेय पर्वत है, अभी बाद में नाम पड़ा उसका आंजनेय पर्वत, तभी तो पर्वत था खाली। उधर उधर केसरी बंदर जो थे, केसरी वानर, उनका राज्य था, और उनकी पत्नी थी अंजनी, वो भी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी, उनको भी पुत्र नहीं थे। वो केसरी और अंजनी पति पत्नी पर्वत पर रहते, तपस्या कर रहे थे अपनी अपनी तपस्या। तो ये जाके खीर का जो हिस्सा है जो पंछी ने चुराया था, वो सीधे जाके हाथ पे गिरा अंजनी के, और अंजनी ने उसको खाया। तो जन्म किसका हुआ? हनुमान जी का। हमारे अस्पताल में भी हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो अंजनेय पर्वत हम्पी गांव में पर्वत के ऊपर तपस्या करते हुए बैठी हुई जो अंजनी माता थी, उनको ये प्रसाद प्राप्त हुआ भगवान की इच्छा से। वायुदेव ने स्वयं उसको उठाया था, एक्चुअली पंछी को बल देकर वायुदेव ने, क्योंकि वायुदेव के पास आदेश था ना भगवान विष्णु का, भगवान ने कहा था मैं राम बनकर आऊंगा, मनुष्य बनकर आऊंगा, आप लोग वानर बन के आना, और वायु को आदेश दिया था आपका भी पुत्र देना है आपको, सबको दिया था ऑर्डर, इंद्र को भी दिया था, तो इंद्र का पुत्र बना वाली, सूर्य को ऑर्डर दिया था, सूर्य ने अपना पुत्र सुग्रीव बनाकर भेज दिया, तो वायु को भी अपना देना था कॉन्ट्रीब्यूशन। तो वायु ने अपने प्रभाव से उसको उठाकर अंजनी को खिलाया, और अपना पुत्र जो है वो अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। एक है खीर का प्रसाद और एक है अपना अंश जो है उन्होंने प्रभाव से अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया, और उसमें बाद में हनुमान जी का जन्म हुआ। और यहाँ पर यथावकाश कौशल्या को रामचंद्र हुए, कैकेयी को कौन हुए? भरत महाराज हुए, और सुमित्रा को दो पुत्र हुए। जो हिस्सा सुमित्रा को प्राप्त हुआ था कौशल्या की तरफ से, उससे कौन आए? लक्ष्मण जी आए। और जो कैकेयी से हिस्सा आया था उसमें से कौन जन्म हुआ? शत्रुघ्न। इसलिए राम का लक्ष्मण से और लक्ष्मण का राम से बहुत ज्यादा प्रेम था, और भरत का शत्रुघ्न से बहुत प्रेम था, क्योंकि वो वहीं से हिस्सा आया था। गर्भ तो सुमित्रा का लिया था उन्होंने, लेकिन वो हिस्सा था कौशल्या का और कैकेयी का। इसलिए जहां जहां भरत गए शत्रुघ्न उनके दास बनकर चले गए, और जहां जहां राम चले गए उनका दास बनकर लक्ष्मण चले गए। और कहने की बात यह है कि अभी चार पुत्रों का जन्म हुआ है, अयोध्या नगरी में इतना आनंद हो रहा है, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, सब लोगों ने अपने आंगन में सुगंधित द्रव्य छिड़का हुआ है, हत्थी पर से मिठाई बांटी जा रही है, सब जगह फूल लगा रहे हैं, सब जगह पर गीत गाए जा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, मिठाई बन रही है, सब लोग आनंद कर रहे हैं, अलंकार पहनकर सुंदर वस्त्र पहनकर जा रहे हैं सब लोग दशरथ महाराज के महल में जन्मोत्सव को मनाने के लिए। आप सोच सकते हैं, वो हमारे घर का बच्चे का जन्मदिन का उत्सव नहीं है, वो राजा का है, वो भी राजा कैसा? दशरथ जैसा राजा, वो भी कैसा? चक्रवर्ती सम्राट, वो भी कैसा? उसको बड़ी उम्र तक बच्चा ही नहीं हुआ था, मतलब कितना बड़ा उत्सव था ये, कितनी खुशी का मौसम था। अचानक इस सारे खुशियों की व्यवस्था में से दशरथ जी महाराज अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को लेकर सब में से उठकर निकल चलते हैं। आप सोच सकते हैं, जिसका बेटा है जो राजा है अभी, वो तो होना चाहिए ना फेस्टिवल में, सीधे चार में से एक बच्चे को उठाते हैं, बड़े बच्चे को, और हाथ में लेकर सीधे अयोध्या के बाहर निकल पड़ते हैं। सबको प्रश्न पड़ता है, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ? लोग अयोध्या के बाहर देखते हैं, जिस तरफ वो जा रहे हैं, देखते हैं तो अयोध्या की सीमा पर एक बहुत बड़ा गीदड़ आके बैठा हुआ है। अभी किसी भी पवित्र समय पर गीदड़ का आना बड़ा अशुभ माना गया है ना? ऐसा कोई प्राणी जो पंछी होता है ना, जो गीदड़ जैसा, जो केवल जब मुर्दा होता है ना किधर, तभी वहां पर आता है वो, जब वो किधर दिखता है मतलब अशुभ मानते हैं उसको, किसी की मृत्यु होने वाली है, वो खाने के लिए ऑलरेडी आके बैठा हुआ है। तो अयोध्या नगरी में इतना पवित्र कार्य हो रहा है, लेकिन उस समय गीदड़ आके बैठता है, सबको दिखाई पड़ता है, वो इतना विशाल था, एक सफेद पर्वत की तरह था, वो दूर अयोध्या के बीच में से भी दिखाई पड़ता था, और राजा ठीक चलते हुए सबको आश्चर्यकारक बनाते हुए सबको छोड़ के सीधा उसके पास पहुंचा। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि राजा क्यों जा रहे हैं उसके पास, गिदड़ के पास क्यों जा रहे हैं, इतना बड़ा उत्सव छोड़कर अपने ज्येष्ठ पुत्र को लेकर क्यों जा रहे हैं, सब लोग दुखी हैं। राजा को कौन प्रश्न करेगा, आप क्यों जा रहे हो वहां पर, यहां पर रहो आप, अभी मूर्ति दलते जा रहे हैं। किसी को हिम्मत नहीं राजा का बोलने का, राजा तो राजा होता है, भगवान की तरह होता है। तो राजा ने जाकर राम को जटायु को अर्पण कर दिया, मैंने वादा किया था, आप भी आ गए हो, आपको पता था कि जन्म हो गया है, ये लो। तो जटायु बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा इतना बड़ा राजा चतुर, अगर वो नहीं भी आता तो मैं क्या करता उसको, इतना बड़ा राजा था वो। लेकिन अपना क्या था, उनका प्रण क्या था, रघुकुल की ये रीत चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, उनका एक उसूल था, आदर्श था उनका, कुछ भी हो जाए जो वादा किया है वो मरना पड़ेगा तो चलेगा, लेकिन वादा पूरा ही करेंगे हमेशा। अभी इतना साल के बाद इतना बड़ा बच्चे हुए हैं, उसमें से सबसे ज्येष्ठ बच्चे को दे रहे हैं उनको, तो बड़े प्रसन्न हो गए वो जटायु। उन्हें कहा कि हम तो गिदड़ हैं, हमारे तो जाति गिदड़ की है, मनुष्य के बालक को कैसे संवारना होता है, उसका संगोपन कैसे करना होता है, ये हमको पता नहीं है, इसलिए आप इस बालक को अपने पास ही रखो, जब बड़ा होगा ना तो मुझे दे देना। तो फिर राजा बड़े खुश होकर वापस अपने बालक को लेकर लौट के आए, तब सब रानियों ने पूछा क्या हुआ, तुम कहाँ गए थे और क्यों गए थे, क्या हुआ बताओ। तब दशरथ राजा ने ये सारी कहानी जो है अपनी रानियों को सुनाई, और प्रजा ने भी सुनी कि राजा कितने महान हैं, राजा होने पर भी अपने वचन को नहीं भूले, ऐसा नहीं कि बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि सब भूल गए क्या वादा किया था, इतनी खुशी के प्रसंग में भी जो दिया हुआ वादा था वो नहीं भूले वो। तो हमको भी सीखना चाहिए, प्रभु रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र के पिताजी क्या उनका रीत रिवाज क्या थी, उनको कोई किसी को वर्ड दिया, अपने शब्द दिया तो उसको मरने तक पालन करना है, अगर मौत भी आएगी मरना भी पड़ेगा तो भी उसको पूरा करना है। उसको कहते हैं इंसान, जो अपने वो क्या कहते हैं मराठी में, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाउले, ऐसे हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं, बोलने वाले बहुत लोग दुनिया में मिलेंगे आपको, करने वाले बहुत कम मिलेंगे, और जैसा बोला वैसा करने वाले तो मिलेंगे नहीं आपको, कुछ बोलेंगे कुछ करेंगे कुछ, करेंगे जरूर लेकिन करेंगे अपनी मन की, बोलेंगे जो बोलना है वो बोलते जाएंगे, हाँ हाँ देश का उद्धार करेंगे, हर आदमी को टॉयलेट बना के देंगे, हर आदमी को अन्न होगा, हर आदमी को नौकरी होगी, हर आदमी का घर होगा, और खुद का घर पहला बनाते हैं और किसी का घर नहीं बनाते। लेकिन दशरथ ऐसे राजा नहीं थे, किसी पार्टी के आज के राजा नहीं थे, वो जो वादा किया था उन्होंने पूरा किया। तो इस तरह से प्रभु रामचंद्र का चैत्र शुद्ध नवमी के दिन जन्म हुआ, और बड़ी धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया गया। और जन्म क्यों हुआ था उनका, मजा करने के लिए नहीं हुआ था, प्रभु रामचंद्र का जीवन जो है वो दुख ही दुख में गया, खाली शुरुआत के कुछ दिन आनंद में रहे लेकिन बाद में वनवास में रहे, कितना कष्ट सहन किया उन्होंने, वनवास से लौट के आए तो पत्नी कहीं और, वो खुद कहीं और, उनका अवतार पृथ्वी को रावण जैसे राक्षसों के बल से और बोझ से मुक्त करने का था, इसलिए अपने स्वयं की गृहस्थी के आनंद का त्याग करके उन्होंने जीवन भर कष्ट सहा, लेकिन पृथ्वी को रावण, कुंभकर्ण, बड़े बड़े भयंकर राक्षस थे, ताड़का, सुबाहु जैसे महान भयंकर राक्षस थे, उनके बोझ से पृथ्वी को और देश को, राज्य को उन्होंने मुक्त किया। भगवान आते इसलिए हैं, हम सबको बचाने के लिए आते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। ये भगवान के अवतार का कारण है, भगवान यहाँ अवतार लेकर खुद मजा करने के लिए नहीं आते, भगवान हमारे दुख का निवारण करने के लिए आते हैं। हम सब लोग सुख दुख में तड़प रहे हैं, यहाँ पर जन्म मृत्यु में तड़प रहे हैं, गर्मी सर्दी में तड़प रहे हैं, हमारे दुख उनको दिखा नहीं जाता, इसलिए हमारा उद्धार करने के लिए वो अपना अयोध्या धाम, दिव्य धाम छोड़कर पृथ्वी पर आते हैं और लीला करते हैं, और लीला में एक काम भी करते हैं, राक्षस को मारते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, हमारे हृदय में धर्म को जागृत करते हैं, हमें को हमारे लिए जो भगवान को भूलकर हम लोग भोग लेने का प्रयास कर रहे हैं उसको ज्ञान देते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये आपका सही स्थान नहीं है, आपका स्थान मेरे घर पे है, आप ये सब भूलकर मेरे पास लौट के आइए, इसलिए खुद आकर लीला करते हैं और राक्षसों को मारकर हम लोगों का उद्धार करते हैं, हम लोग को प्रेरणा देते हैं। प्रभु रामचंद्र ने भी लीला इसलिए किया पृथ्वी माता ने गाय बनकर विष्णु के पास प्रार्थना किया था कि ये रावण का आतंक जो है मुझे सहन नहीं हो रहा है, मेरी जनता जो है वो तड़प रही है। तब प्रभु ने वादा किया था कि मैं आऊंगा। तो रावण को इतना वरदान मिला है कि देवता, कोई जानवर, कोई मछली, कोई पक्षी, कोई नहीं मार सकता उसको, सांप कोई नहीं मार सकता, लेकिन मनुष्य के बारे में कुछ कहा नहीं उसने। उन्होंने सोचा था कि मनुष्य क्या है, तो उसको मैं ब्रेकफास्ट में खाता हूँ, उससे क्या वरदान मांगना है कि मनुष्य बचूंगा मैं, तो मैं मनुष्य बनकर आऊंगा। ताकि उसने वो मांगा नहीं ना अपने वरदान में कि मनुष्य से भी मुझे अभय चाहिए। तो ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने इन्फॉर्मेशन दिया था कि ऐसा ऐसा उन तपस्या किया था, तो मैंने उसको ऐसा ऐसा वरदान दिया है, उसमें मनुष्य का नाम लिया नहीं उसने। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम मनुष्य बनकर आएंगे, आप सब लोग वानर बनना। और सब लोग को वानर बनने का आदेश दिया, सब लोग पहले से जन्म लेके बड़े बैठे रहे, फिर प्रभु ने जन्म लिया। और फिर अपना जैसा वादा किया था पृथ्वी को, वैसे राम के रूप में राक्षस का वध किया और हम लोगों को प्रेरणा दिया। क्या दिया हमको उन्होंने? रामचरित्र दिया। रामचरित्र मतलब सीता राम का चरित्र जो है वो मनुष्य के लिए बहुत पवित्र है, बहुत पुण्यदायी है, बहुत ही पवित्र और दिव्य है, जिसका चरित्र सुनने से हृदय पाप से मुक्त हो जाता है। इसलिए हमारे देश में अभी अभी तक ये कल्चर था कि रोज शाम को खेती से आने के बाद में बड़े बुजुर्ग बैठते थे और जवान लोग आके बैठते थे और वो रामायण सुनते थे, प्रभु राम की कथा सुनते थे, रामलीला का नाटिका देखते थे, और प्रभु राम का कथा सुनने के बाद में उसी का विचार करके रात को सोते थे, फिर उठ के काम करते थे, फिर वो शाम को आके वापस कथा सुनते थे। 365 दिन हर रोज शाम को प्रभु की कथा सुनते थे, ये हमारा कल्चर है। लेकिन जैसे टेलीविजन आ गया, राम कथा समाप्त हो गई, फिर शुरू हुआ सीरियल सास भी कभी बहू थी, फिर ब्लैक एंड व्हाइट गया, फिर कलर टीवी आया, फिर कलर के बाद में 158 इंच टीवी आया, पूरा घर का दीवार पूरा एक ही टीवी, पूरा दीवार एक टीवी है, और स्टीरियोफोनिक आवाज आया। उसके बाद में रामायण सब भूल गए, महाभारत सब भूल गए, शाम को आए जैसे बैठ गए, रात को 11-12 बजे तक उसको चिपक के बैठे हुए हैं, सब उसका एक्शन, इमोशन, वायलेंस, हिंसा, गोला बारूदी, मारा मारी, रेप सब देख रहे हैं उसके अंदर। तो कैसे हृदय का उद्धार होगा? हृदय का उद्धार, आत्मा का उद्धार, हमारा कल्याण कब होगा? जब हम प्रभु की कथा सुनेंगे, प्रेम से कथा सुनेंगे, हमारा हृदय स्वच्छ होगा, हमारा कल्चर अच्छा होगा, हमारा जो क्या कहते हैं उसको व्यक्तित्व है, चरित्र है, वो पवित्र हो जाएगा। हमारे अंदर कितने पाप है, हमको चोरी करने की प्रवृत्ति है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति है, किसी को दुख देने की प्रवृत्ति है, हमारे अंदर कई दोष हैं, वो सारे दोष जो है प्रभु का कथा सुनने के बाद नष्ट हो सकते हैं, हमारा हृदय बुरी प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकता है। इसलिए हमने इतना प्रयास किया आपको बताने का, प्रभु का चरित्र बताने का, वो भी पूरा खंड थोड़ी बताया, छोटा सा हिस्सा बताया उसका। अब आते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो और बताते जाएंगे, और प्रभु की कथा सुनने से सारे हमारे जितने पाप है वो नष्ट हो जाएंगे, गलत आदतें नष्ट हो जाएंगी, हमारा हृदय पवित्र होगा और दोबारा एक बार भगवान के धाम में जाने के लिए हम योग्य हो जाएंगे। बोलो प्रभु रामचंद्र भगवान की जय हो। प्रकाश परदेशी।